कोलबा, एक मराठी लोक कथा। कथा संध्या राव। चित्र रंजन दे। अनुवाद सुषमा।
ये एक शब्द पंछी पुस्तक है। जब आपको शब्द पंछी की ऐसी आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब है शब्द पंछी आपको दूसरी किसी भाषा के शब्द का अर्थ समझाना चाहता है, या फिर ऐसे किसी शब्द का अर्थ जो आप एकदम से ना समझ पाएं। याद रखिए, ये आवाज शब्द पंछी की है। कहानी के दौरान जब आप ये आवाज सुने तो इसका मतलब है पन्ना पलटिए, और अंत में जब आप ये आवाज तीन बार सुने तो इसका मतलब है कहानी समाप्त हो गई। सोनाबाई विंध्या पहाड़ियों के बीच एक गांव में रहती थी। उसकी झोंपड़ी के पीछे एक घना रहस्यमयी जंगल था। ऐसे लगता था जैसे उसके पेड़ आकाश को छू रहे हों। सोनाबाई बिल्कुल अकेली रहती थी, मगर फिर भी वो कभी अकेली नहीं थी। उसके बहुत सारे प्रियजन थे, जैसे पंछी, जानवर, कीट पतंगे और गांव के लोग भी। वो बहुत खुश रहती थी।
विंध्या पहाड़ियां मध्य भारत में है।
सोनाबाई की झोंपड़ी के पास ही एक पेड़ था जो जंगल के दूसरे और पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उस पेड़ पर इतने सारे मीठे और रस भरे लाल बेर उगा करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पर यही सब नहीं, हर रात सोनाबाई अपना काम खत्म करती और सो जाती। अगली सुबह जब वो जागती तो देखती कि पेड़ के नीचे रस भरे लाल बेरों का जैसे कालीन बिछा हो। ऐसा हर सुबह होता था। लाल बेरों वाला पेड़ एक बहुत ही खास पेड़ था। ये जैसे जादू है, सोनाबाई ने अपने दोस्तों से कहा। सच में वो जादू ही था। खुशी खुशी सोनाबाई नीचे गिरे लाल बेर अपने पल्लू में इकट्ठे करती और उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले जाती। उसमें से कुछ बेर वो अपने दोस्तों के लिए और कुछ अपने लिए रख लेती, और बाकी के बेरों का खट्टा मीठा स्वादी स्वादी हलवा बनाती। सोनाबाई आ गई, सोनाबाई आ गई, बच्चे चिल्लाते जैसे ही सोनाबाई को हाट में देखते।
हफ्ते में एक दिन हाट बाजार लगता है, जहां लोग तरह तरह की चीजें बेचते हैं।
बाजार की गहमा गहमी और शोर से भी ऊपर सोनाबाई की आवाज सुनाई देती। चक्कर देखो, लाल बेरों का हलवा, मीठा मीठा स्वादी स्वादी सोनाबाई का हलवा, 10 पैसे का एक टुकड़ा, दाम भी कितना सस्ता, इस मेले में सबसे अच्छा सोनाबाई का हलवा। कुछ ही देर में सोनाबाई की पूरी टोकरी खाली हो जाती और उसकी गुत्थी सिक्कों से झनझनाने लगती। पर अगर आप ये समझते हैं कि सोनाबाई का जीवन हमेशा लाल बेरों की तरह मीठा मीठा था, बिल्कुल नहीं, खासकर जब तक कोलबा वहां थी। गड़बड़ तब शुरू हुई जब एक सुबह सोनाबाई बेर इकट्ठे करने पेड़ के नीचे गई और वहां पेड़ ही नहीं थे, एक भी नहीं। बड़ी अजीब बात है, सोनाबाई ने कहा। उसने पत्तों में से झांककर देखा तो पाया कि डालियों पर तो रस से भरे लाल बेर लटक रहे थे, पर जमीन पर एक भी नहीं था। सोनाबाई ने अपना सिर खुजाया और सोचने लगी, आखिर हुआ क्या होगा। और तब उसने देखा पेड़ के इर्द गिर्द घूमते पंजों के निशान। सोनाबाई उन पंजों के निशान के पीछे पीछे चलती गई और तभी उसका पैर बेरों की गुठलियों के ढेर पर लड़खड़ाया। छी! सोनाबाई चिल्लाई, छी! यही किस्सा अगले दिन फिर हुआ, और उससे अगले दिन फिर, और उससे भी अगले दिन फिर। कोई उसके पेड़ के बेर खा रहा था और अपने पीछे उसका सारा कचरा छोड़ जाता था। सोनाबाई का गुस्सा रोज बढ़ने लगा और पांचवें दिन उससे और सहा नहीं गया। उस रात वो जागती रही और पेड़ की निगरानी करती रही। जैसे ही बेर नीचे गिरते, उसे उनकी आवाज साफ सुनाई देती, प्लप प्लप प्लप। सोनाबाई बुदबुदाई। उसे इस आवाज में जैसे संगीत सुनाई दे रहा था। फिर अचानक जंगल की परछाइयों में से एक छाया अलग हुई और तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। वो छाया पेड़ के नीचे आकर रुक गई। जल्दी जल्दी उसने सारे बेर गड़प गड़प करके खा लिए। कोलबा, चालाक लोमड़ी, तो तू है जो मेरे बेरों की चोरी करती रही। सोनाबाई फुसफुसाई, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूं। सोनाबाई सिर हिलाते बोली और फिर छाया वापस जंगल की परछाई में जाकर गायब हो गई। अगले दिन सोनाबाई ने जी जान लगाकर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी तवा ढूंढा। फिर उस तवे को उसने रगड़ रगड़ कर साफ किया और उसे अच्छी तरह चमका दिया। उसने अपने दोस्तों से ईंधन की लकड़ियां उधार ली और उससे एक बहुत बड़ी आग तैयार की। फिर उसने तवे को आग पर रख दिया। कई घंटों के बाद जब तवा बहुत तेज गर्म हो गया तो सोनाबाई ने उसे घसीट कर पेड़ के नीचे छिपा दिया। अब तक रात हो चुकी थी। सोनाबाई खुद दरवाजे के पीछे छिप गई। जल्दी ही पहाड़ी से कोलबा नीचे उतरने लगी और छिपते छिपाते वो बेरों पर टूट पड़ी। सोनाबाई इंतजार करती रही और देखती रही। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, आए, 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 आए। सोनाबाई खुशी से चहकने लगी। कोलबा कोलबा, सोनाबाई झोंपड़ी में से चिल्लाई, बोर पिकलिका तेरी पिकलिका, बेर पके या तेरी पिछाड़ी। कोलबा चिल्लाई, तेरी पिकली। उठते गिरते रोते पीटते कोलबा वापस जंगल में भाग गई, अपने सूजे झुलसे हुए पिछाड़ी को उठाए। सोनाबाई को भी उस पर तरस आने लगा, पर कोलबा फिर कभी उस तरफ वापस नहीं आई।